ओम शांति बाबा। हमें मुरलियों के माध्यम से अनेक प्रकार के गहरे राज ज्ञान के खोलते रहते हैं। जैसे गीता के 18 अध्याय हैं और अंतिम अध्याय से हम सभी परिचित है कि अंतिम अध्याय का सार रूप में कहो तो नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। मुरली 1986 की है, 20 जनवरी। तो बाबा उसी समय हम सब बच्चों को बता रहे हैं कि अभी 18वां अध्याय आरंभ हो रहा है, अर्थात 17 जो अध्याय है वो तो सारी लड़ाई चलते रहे, प्रश्न उत्तर चलते रहे, भीष्म पितामह के साथ अर्जुन के कई प्रकार के संशय उठते रहे। उन संशय को क्लियर करने के लिए भगवान ने बहुत सारे उत्तर दिए उनको। मना कितना पेशेंस रखा भगवान ने भी। तो 86 में ये जो मुरली है, एक बहुत सुंदर समय। बाबा ने जैसे 50 साल जो बीत गए हैं वो एक तरफ हैं, और 86 जो ये साल आरंभ हो रहा है वो एक तरफ है। दोनों को इक्वल जैसे बताया बाबा ने। उस वर्ष को पुरुषार्थ और परिवर्तन का ये जो गोल्डन चांस है ये वर्ष है, अर्थात इस एक वर्ष में हम स्वयं का इतना परिवर्तन कर सकते हैं जो पिछले 50 साल के बराबर हो सकता है। इतना वरदानी वर्ष है वो। वरदानों से भरा हुआ है, मानो उसमें हमारी हिम्मत भी काम करेगी और मदद भी है उसमें भगवान की। तो भगवान उसमें हमको ये भी चेत किया है कि इन 50 वर्ष जो बीत गए और ये जो एक वर्ष है इसको ऐसे नहीं गवा देना। 50 वर्षों के बराबर है, उससे भी ज्यादा है ये। अर्थात हमारे में उमंग उत्साह और भर रहे हैं, हिम्मत भर रहे हैं, साहस भर रहे हैं, ताकत भर रहे हैं, पुरुषार्थ करने के लिए बाबा को प्रेरित कर रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते ब्राह्मण थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं तो बाबा हम सबको और फोर्स भरते हैं उसमें, ताकि हमारी पुरुषार्थ की जो गाड़ी है उसकी स्पीड और पहले की अपेक्षा तीव्र गति से हो सके। इस मुरली में बाबा ने और संसार के हालात के बारे में बताया, जो कि हम अभी भी देख रहे हैं कि कैसे विनाश की काली घटाएं हैं, लोग कैसे उनसे डरे हुए हैं। मानो बोस में और अभिकस में एक कुल जैसे लग रहा है। बाबा ने जैसे उस समय इस समय की भी भविष्यवाणी कर दी, और हम ब्राह्मण बच्चों की अवस्था के बारे में बताया कि कैसे तुम स्वर्णिम दुनिया का जो सूर्य उदय हो रहा है, स्वर्णिम युग के नजारे हैं तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम खुशी के घुंघरू नाचकर डाल रहे हो, और संसार की आत्माएं कैसे भय में जी रही, ये भी इसके बारे में बताया। और फिर इस मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि बौद्ध काल का जो पुरुषार्थ का जो समय है वो भी बीत गया है, अभी अल्प काल का जो थोड़ा समय रह गया वो आरंभ हो रहा है। बौद्ध काल के जो संस्कार प्रैक्टिकल में है वो काम स्वतः करते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा समय है इस समय में जो हम संस्कार डाल देंगे वो हमारा भविष्य जमा करेंगे। नहीं तो अगर ये भी कर दिया तो पिछले जो बौद्ध काल के संस्कार है वो हमको बार 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 अटैक करेंगे, अगर हमने अटेंशन नहीं दिया तो। इतना गंभीरता पूर्वक अटेंशन देने की जरूरत है। तो संस्कारों के बारे में आप बताया कि कौन से संस्कार हमको जो नियमित जो निरंतर स्मृति स्वरूप बनना, कैसे पॉइंट स्वरूप बनना। और बाबा ने जिक्र किया कि पॉइंट तो बच्चों के पास बहुत हैं, बाप दादा से भी ज्यादा है। भाषण करेंगे तो बाप दादा से भी ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन अभी पॉइंट स्वरूप बनो, निरंतर स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति और विस्मृति का भी इस चक्कर को छोड़ दो, इस खेल के छोड़ दो। फिर मोह हमारा कहाँ कहाँ जुटा हुआ है, मोह की रगे, चाहे वो स्वयं के प्रति है, स्वयं की विशेषताओं के प्रति है, या परिवार के प्रति है, या फिर सेवा के प्रति हमारा मोह है, कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट है, या फिर हद की प्राप्तियां हैं, जो जिन हद की प्राप्तियों के पीछे हमारा समय नष्ट हो जाता है, एनर्जी चली जाती है, उन कहाँ ना कहाँ मोह है, तो उनसे भी कैसे मुक्त होना है, नष्ट मोहा होना है, इसके ऊपर भी बाबा ने हम सबको बताया। फिर बाबा ने जो सिल्वर जुबली वाले हैं और गोल्डन जुबली वाले हैं उनकी सभा लगी है, तो कैसे नई दुनिया का गेट कौन खोलेगा, स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा, उसका जिक्र किया। और जो सिल्वर जुबली वाले आए हैं उनको मुबारक दी है, और मिलन हुआ है समर्थ बाप का समर्थ बच्चों के साथ 86 में, ओम शांति भवन में ये महफिल लगी हुई है कि समर्थ बाप है और समर्थ बच्चे हैं, दुनिया में अनजान आत्माएं हैं, वो क्या सोचती हैं और तुम क्या सोचते हो, कितना डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि अगर उस समय को भी अभी के समय से देखा जाए तो जो पुरुषार्थ और परिवर्तन करने का जो गोल्डन चांस है वो भी हम सबको भी ये मिला हुआ है, ब्राह्मणों को विशेषकर, क्योंकि हम ब्राह्मणों के सामने फ्यूचर बिल्कुल क्लियर है। दुनिया वाले तो देखते हैं हम कैसे कैसे जी रहे हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर के लिए, और बाबा ने अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां करके हम सबको हर बात की समझ दी है, जानकारी दी है कि कैसे चलना है, क्या पुरुषार्थ करना है। तो हमें स्वयं के पुरुषार्थ की जो रफ्तार है उसको तीव्र करने के लिए, स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए ये जो गोल्डन समय मिला है, जो चांस मिला है, सुनहरा चांस, इसको हमको किसी भी कीमत पर गवाना नहीं चाहिए। और भी बाबा ने बीच में जिक्र किया कि कोई कोई बच्चों में बाबा देखते हैं अभी भी व्यर्थ बहुत है, अयथार्थ कर्म विकर्म बहुत करते रहते हैं, फिर भी बाबा कैसे रहम का सागर है, स्नेह का सागर है, बाबा फिर भी एक गोल्डन चांस दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं उससे मुक्त होने का। तो वास्तव में वही इसमें फिर से हम बच्चों को मिला हुआ है।
बाबा चाहे तो आउट कर सकता है,
हाँ आउट कर सकते हैं बाबा, लेकिन करते नहीं है। तो माना जो हम ये सोचते हैं, जो बाबा कहते हैं कि अंत तक कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए कि उलर ना दे मुझे कि हमको तो चांस नहीं दिया पुरुषार्थ के लिए, हम तो लेट आए हैं, पहले आते तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते। तो हम ये इसमें महसूस कर रहे हैं, ये जो समय चल रहा है, कि अभी भी हर ब्राह्मण बच्चे को पुरुषार्थ में बहुत आगे जाने का चांस है। वो आज तक भले किसी ने नहीं भी किया कुछ भी, लेकिन अभी से भी अगर हम करना शुरू कर दे तो फिर भी बाबा कहते हैं बहुत आगे जा सकता है। अगर हम उस चीज को रियलाइज कर ले, जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, जो भी खामियां हैं, जिनके जिनको परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन कुछ एक संग दोष में कहो, या अनेक प्रकार की हद की बातों में या व्यर्थ की बातों में हम अपने पुरुषार्थ को रोक कर बैठे हुए हैं, अगर रियलाइज कर उन चीजों को छोड़कर अभी से भी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना शुरू कर दें, तो बाबा जैसे बंधा हुआ वरदान देने के लिए, क्योंकि वो वरदाता विधाता है, वो क्या कर्तव्य वरदाता विधाता का बाबा ने वो भी बताया उसके बारे में। तो जैसे बाप है वैसे बच्चों को बनना है। तो माना हमको ये पुरुषार्थ का और स्वयं के परिवर्तन करने का बहुत सुंदर चांस मिला हुआ है। तो हमको जी जान से बहुत प्यार से बड़ी रुचि से इस पुरुषार्थ का सुख लेना चाहिए, स्वयं के परिवर्तन, क्योंकि ये पूरे कल्प की बाजी है और ये थोड़ा सा समय है, उसमें कब एकदम बदल जाए, परिवर्तन हो जाए, किस रूप में परिस्थितियां विकराल रूप बनकर हमारे सामने आ जाएं, चाहे वो प्रकृति के पांच तत्व हैं, चाहे वो समाज की अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो किसी भी कारणवश बिगड़ सकती हैं, चाहे वो राजनीतिक हलचल है, माना विश्वव्यापिक वैश्विक स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अगर हम उन समस्याओं का ही चिंतन करते रहेंगे तो हमारी समस्या, वो समस्याएं हमारे संस्कार बन जाएंगे और हम उन संस्कारों में हमारा सारा समय नष्ट हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास, तो बहुत काल का अभ्यास हमारा समस्याओं में जा रहा है,
युद्ध चल रहा है,
जो कि चल रहा है हम देख रहे हैं। तो वही अगर हमारे संस्कार बन गए तो अंत में बावन का विनाश काल को तो अंत काल कहा जाएगा। तो उस अंत काल में जो थोड़ी सी पुरुषार्थ, थोड़ा सा प्रलब्ध, वही कहा जाएगा, वो तो बहुत काल की प्रैक्टिस नहीं रही। और बहुत काल की नहीं रही तो उसका भी रिजल्ट बताया कि कैसे आगे फिर, जो अगर बहुत काल से अच्छा पुरुषार्थ करते हैं कैसे वन वन में आएंगे, नहीं करते हैं तो नेचुरली लेट आएंगे, वो बाप ने उसके बारे में बताया। तुम फरिश्ता सो देवता एक है, तो हम देखेंगे 1986 की बोली है, 20 जनवरी की, ओम शांति उनमें चली है। तो यहाँ बाबा समर्थ बाप समर्थ बच्चों से मिल रहे हैं, क्यों बाबा क्या उनको याद करा रहे हैं कि तुम बड़े से बड़ा समर्थ कार्य करने वाले हो। और कौन सा समर्थ कार्य है? विश्व को श्रेष्ठ नया विश्व बनाना। ये दृढ़ संकल्प है उन आत्माओं के अंदर, दो संकल्प है, एक तो विश्व को नया बनाना, श्रेष्ठ बनाना, ये एक दृढ़ निश्चय से संकल्प किया है उन्होंने। और दूसरा संकल्प है विश्व की सर्व आत्माओं को सुख और शांति ये अनुभव कराना होगी, ये दृढ़ संकल्प है उन्होंने। और इस दृढ़ संकल्प के आधार पर निश्चय बुद्धि होकर, निश्चिंत होकर वो कार्य कर रही है आत्माएं, समर्थ आत्माएं। और उसमें बाबा ने कहा कर्म और फल किस तरीके से कर रहे हैं, कि कर्म और फल का भी पता है, पुरुषार्थ और प्रलब्ध, निमित्त और निर्माण वर्कर, ये कर्म फिलोसफी का सिद्धांत है। ये तीनों चीजें इसके आधार पर निश्चिंत होकर, निश्चय बुद्धि बनकर, दृढ़ संकल्प होकर वो कार्य में लगी हुई है, क्योंकि उनको इतना निश्चय है कि परिवर्तन तो होना ही, क्यों, क्योंकि पता है परमात्म कार्य है। बाबा ने कहा ये संसार की आत्माओं का या संसार की महान आत्माओं का या धर्मात्माओं का कार्य नहीं है, ये तो परमात्म कार्य है, इतना निश्चय है। और क्यों होगा कार्य, क्योंकि उन आत्माओं ने स्वयं को परिवर्तन कर लिया, इसलिए संसार को परिवर्तन करने का संकल्प ऑटोमेटिकली दृढ़ हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण है उनके पास, क्योंकि स्वयं के जीवन को परिवर्तन किया। हर ब्राह्मण आत्मा अगर देखे तो ब्राह्मण जीवन से पहले हम क्या थे और अभी हम क्या बने, तो जो परिवर्तन की शक्ति वो कहां से आई, परमात्मा साथ, उसकी दया, उसके आशीर्वाद को, उसका रहम को, वो अनुभूति है, उसके आधार पर स्वयं को परिवर्तन किया, अपने बहुत सारे संस्कारों को, अपनी चाल चलन को, भाषा को, व्यवहार को, दृष्टि वृत्ति कृति को, हमारा कितना परिवर्तन हो गया। उस परिवर्तन का स्वयं को निश्चय है ना कि परिवर्तन हुआ, तो भगवान के ऊपर भी निश्चय है। और ये निश्चय हुआ कि हमने स्वयं को परिवर्तन कर दिया तो विश्व को परिवर्तन करने का कार्य भी वही पड़ा है। बाबा ने कहा दुनिया की अनजान आत्माएं सोचती हैं कैसे होगा, शांति होगी, क्या होगा, ना उम्मीद बने हुए हैं, लेकिन आप बच्चे सोचते हैं होगा तो क्या, हुआ ही पड़ा है, क्योंकि परमात्म कार्य है ये होना, ये निश्चित है, निश्चिंत है, इसी के आधार पर आप श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, कामना रखकर आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्य तो होना ही, आप निमित्त है इसमें, कार्य तो होना ही है। वो संसार की आत्माएं डरी हुई है, डरते हैं, बोलो किस चीज से, विनाश की काली घटाएं हैं, उनको डर है क्या होगा। और तुम बच्चे स्वर्णिम दुनिया के नजारे देख रहे हो, नई दुनिया का जो सूर्य उदय होने वाला है, स्वर्णिम सूर्य उदय होने वाला है, वो तुम बच्चे निश्चिंत हो क्योंकि तुमको पता है। और वो विनाश की काली घटाएं, वो उसके भय से जी रहे हैं। तो दुनिया वालों को कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है, और आपको तो परिवर्तन के प्रत्यक्ष का प्रमाण है आपके सामने, बाबा ने कहा। खुशी के घुंघरू बांध कर नाचते हो कि आज पुरानी दुनिया और कल क्या होगा, स्वर्ण दुनिया होगी। आज पुरानी दुनिया विनाश के घुंघरू पर नाच रही है, भय में है, जी रही है, क्योंकि संसार की आत्मा वास्तव में यहां हमको हमारा कितना बड़ा कर्तव्य भी बन गया है, क्योंकि संसार की आत्माओं को बेचारों को पता ही नहीं है तो उनको सुख शांति कहां से मिलेगी। तो हम जहां तक भी हो सके सारे दिन में छोटे छोटे अभ्यास करके विश्व की सर्व आत्माओं को इमर्ज करके उनको शांति की किरणें देना, शक्ति की किरणें देना, बाबा के सामने इमर्ज करके उनमें ताकत भरना, उम्मीद की किरणें जगाना, जीने का उमंग सा देना, जो संसार में भय का माहौल बना हुआ है उस भय से बाहर निकालना, उनको थोड़ा उनमें भी हिम्मत आए, उमंग उत्साह। और हम एक चीज और भी महसूस कर रहे थे कि अंत में संसार की सब आत्माएं जो है एक बार तो भगवान को जरूर उनके दिल में भगवान की याद जाएगी जाएगी, चाहे वो किसी भी कारण से। तो इस संसार की जो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं चाहे वो किसी भी कारण से है, इसलिए कहा जाता है कि दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई। तो संसार में तो बाबा कितने दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, तो अभी हम समझते हैं इतना दुख बढ़ेगा कि सबको भगवान की याद आएगी ही आएगी, करना ही पड़ेगा दूसरा माध्यम, क्योंकि बाबा सबको साथ लेके जाएगा। अब जिसके साथ जाएंगे नेचर उसकी याद तो आएगी आएगी। तो जो दुख भी हैं ये भी हम सबको भगवान की तरफ ले जाते हैं। कल हम एक कोटेशन पढ़ रहे थे, किसी ने भेजा था कि कई बार मनुष्य को पाप भी है वो भगवान की तरफ ले जाता है, और कई बार मनुष्य को पुण्य का अहंकार भी नीचे गिरा देता है। इसलिए बाबा कहते हर बात में कल्याण छिपा हुआ है, चाहे संसार में कुछ भी हो रहा है, पाप का गड़ा भर गया है या भर रहा है, अंतिम समय चल रहा है, तो उसमें भी मनुष्य आत्माओं का कहीं किसी ना किसी तरीके से भगवान की तरफ ध्यान जा रहा है। जब संसार की हर आत्माएं भगवान की तरफ उनका ध्यान जाएगा, बुद्धि जाएगी, तो निश्चित तौर पर सभी के मुख से निकलेगा कि परिवर्तन, क्योंकि दुख की पीड़ा बहुत झेल रहे हैं, अभी जीना दूर हो गया, मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, हर परिस्थिति में कल्याण है। इसलिए बाबा कहते हैं कई बार हमको कल्याण दिखता नहीं है, लेकिन समय आने पर वो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये जो परिस्थिति क्रिएट हुई है वायरस की, इसमें तो बहुत बड़ा कल्याण छिपा, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों को उड़ती कला में जाने का ये बहुत सुंदर समय मिला हुआ है, बहुत सुंदर बेला मिली हुई है। तो इसको हमको कैसे व्यतीत करना है,
ये जो गोल्डन चांस है ये उन आत्माओं को नहीं मिला।
हाँ,
ये भी महान आत्मा जो आदि आत्मा हाँ, जो उनको भी नहीं ऐसा चांस नहीं मिला। ये चांस शायद इसीलिए दिया गया कि जो लास्ट में लोग आए हैं वो पुरुषार्थ कर।
बिल्कुल, लास्ट में आने वाली आत्माओं को गोल्डन चांस का ये मौका मिला है। हालांकि इससे पहले भी आत्माएं आई गई, लेकिन विशेष चांस अब की आत्माओं को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेवाओं के विस्तार में इतना चले गए हैं हम। इस मुरली में बाबा ने जिक्र किया कि समेटने की शक्ति चाहिए, तो सेवाओं के विस्तार में इतना जाने से क्या हुआ, कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को बनाने में थोड़ा दूर चले गए थे। अपनी स्थिति को बनाने के बजाय सेवाओं के विस्तार में जाकर जो हमारी मानसिक शक्तिशाली होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, इसलिए ये भी एक ब्रेक है, ड्रामा में नूंद है। कर्ण करावन हार तो कहा जाता है, लेकिन बाबा जी कहते मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं। तो ड्रामा में एक ये भी हमको जो परिस्थिति पाठ पढ़ा रही है, हमको अपनी मानसिक स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ कह रही है, इसको महसूस करने के लिए, उसको सुनने के लिए बहुत सूक्ष्म रूप से अंतर्मुखी अवस्था में जाने की जरूरत है। जैसे पिछले मुरली में था ना कि बाबा को बाहर मुखी बच्चे पसंद नहीं, अंतर्मुखता की गुफा में। तो अभी जो पुरुषार्थ है वो वास्तव में बहुत अंतर्मुखी होके व्यर्थ की बातों को छोड़कर हमें अंदर ही अंदर पुरुषार्थ के प्रति एक प्यार हो जाना चाहिए, लगाव अटैचमेंट हो जानी चाहिए, अंदर ही अंदर बैठे, किसी की बातों में ना जाएं, व्यर्थ में चर्चाएं परिचर्चाएं, क्या हो रहा है उधर, क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये भी मुरली में जिक्र है। तो ये सब बातें हमारे हमारे में अलमेलापन लाती हैं और यही धीरे धीरे हमारे संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो अभी तक जो भी हमारी आदतें पक्की हुई हैं, चाहे वो हम किसी भी साधन में फंसे हुए हैं या किसी के संस्कारों को अपने मन में उनको पोषित करके रखा हुआ है, या किसी के बारे में व्यर्थ में सोच रहे हैं, या कोई हमारे अपने ही ऐसे संस्कार हैं, ऐसे कुटिल संस्कार हैं जो हमको दुख दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अंदर अंदर गिल्ट कॉन्शियस पैदा हो रही है, तो हम तो ये महसूस करें कि उन सब से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये विशेष बाबा का जैसे वरदानी समय है, इस वरदानी समय पर हमको पूरा पूरा बाबा से जैसे फायदा ले लेना चाहिए। अगर अभी नहीं किया तो सचमुच बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ये एक बहुत सुंदर मौका मिला हुआ है,
बाद पछताना ही पड़ेगा अगर इस समय को वेस्ट किया है।
बिल्कुल, अभी अगर हमने नहीं किया तो फिर पश्चाताप का समय चालू हो जाएगा,
इसके बाद चालू होना है,
चालू होना है वो,
बिल्कुल पेपर का समय भी चालू होना है।
हाँ बिल्कुल, पेपर का समय भी चालू होना है। और देखिए भाई, परीक्षा पढ़ाई तो पूरी होगी एक हिसाब से देखा जाए, अब ये जो थोड़ा सा हमको टाइम मिला हुआ परीक्षा से पहले थोड़ी सी तैयारी करने के लिए मिला हुआ, अब इस तैयारी के समय भी हमने दूसरी दूसरी बातों में गवा दिया तो हमारा भविष्य क्या बनेगा? तो हमको पेपर देते समय भी क्या होगा, दुख होता रहेगा।
अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इशू,
बिल्कुल बिल्कुल।
कल बाबा ने कह दिया कि जिसके पास धन भी है तो वो भी भूखा मर,
वो भी हाँ कल की मुरली में है, चाहे अर्थव्यवस्था तो अभी डामाडोल हो रही है, चाहे साहूकार है उनको भी अनाज नहीं मिलेगा कल की सकार मुरली में, तो ये परिस्थितियां आने वाली है। और इन परिस्थितियों को जानते हुए भी अगर हम अपनी आंखें बंद करके रखें, अलबेलेपन की नींद में सोए रहें, तो फिर हमको क्या कहा जाएगा? तो बाबा का हम सब आत्माओं के ऊपर बहुत प्यार है, उसकी बहुत आशीर्वाद कहो हमारे पर कृपा दृष्टि है, तो इसको हमको पूरा पूरा फायदा ले लेना चाहिए इस लॉकडाउन का। एक सेकंड में ईश्वरी संप्रदाय में, तो कोई कोई बच्चे कलयुग में चले जाते हैं आसुरी संप्रदाय में एक सेकंड में, और अगले सेकंड में ईश्वरी संप्रदाय में, तो अपने को चेक करना है कि कौन से संप्रदाय में हम
याद और श्रीमत पर चल रहे वो ही संगम है।
बिल्कुल, बाकी मौत है, जो याद और श्रीमत पर चल रहे हैं वो संगम है ऊपर, और दूसरों के लिए मौत है बाबा ने कहा। ये बात सेंटेंस थी साकार मुरली में कल की। तो इस मुरली में बाबा ने फिर आगे कहा कि बाबा दो बातें देखना चाहते हैं बच्चों में, अनुभव करना चाहते हैं, अभी वो बच्चे अनुभव करें दो बातें, कौन सी? एक संपूर्णता और समानता। अब हमको बाबा यहाँ जो चाह रहे हैं, हमारे जो अपेक्षा रखी है कि हम सीढ़ी नीचे उतर चढ़े नहीं, एक समानता और संपूर्णता की स्टेज पर हमेशा स्थित रहे, बाप समान समानता और संपूर्ण जो हमारा स्वरूप है उस पर हमेशा हम निरंतर कंटिन्यूस लगातार उसी पर बैठे रहे। तो उस स्टेज पर रहने से स्वतः फिर सेवा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमको वो स्पष्ट है कि हमको ये बनना है। तो बाबा कहते तुम्हारा जो संपूर्ण फरिश्ता रूप है वो विजय की माला लेकर तुम्हारा आह्वान कर रहा है। ये कितना सुंदर सीन है एक योग के लिए कि हम बतन में बैठे हैं, हमारा सूक्ष्म जो फरिश्ता स्वरूप है वो हमारा आह्वान कर रहा है, बाप समान जो स्टेज है वो हमारी आह्वान कर रही है, विजय माला लेकर वो खड़े हैं, अंतिम समय है। यहाँ बाबा ने फिर समय के बारे में जिक्र किया, बतन में आना जाना, वो फिर आगे हम बात करेंगे उस पर। तो यहाँ संपूर्णता और समानता, ये दोनों चीजें हमें निरंतर स्मृति में रहना चाहिए। वास्तव में देखा है मुरली में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसे समर्थ पॉइंट होते हैं, समर्थ स्मृतियां होती है जो हमें हमेशा अपनी जो ओरिजिनल स्थिति है उस पर स्थित करने के लिए हमारे में ताकत बढ़ती है, लेकिन वो हमको स्मृति में रहनी चाहिए। इस मुरली में बाबा ने कहा अभी स्मृति और विस्मृति के खेल छोड़ दो, स्मृति स्वरूप बनो, क्योंकि 18वां अध्याय चालू हो चुका हुआ है। तो दो जो स्टेज है, समानता और संपूर्णता, ये हमेशा हमको बुद्धि में रहे कि हमारा संपूर्ण फरिश्ता रूप हमारा आह्वान कर रहा है, विजय माला लेकर खड़ा है। तो योग में बहुत अच्छा प्रयोग, चलते फिरते हम कर सकते हैं, और कुछ दिनों पर अंदर इधर अटेंशन रखने की जरूरत है कि चलते फिरते हमको ये अभ्यास करना चाहिए, मैं फरिश्ता इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ, चल रहा हूँ, निरंतर मेरे से वाइब्रेशन निकलते जा रहे हैं और निरंतर चारों प्योरिटी के वाइब्रेशन। बाबा ने कहा तुमने बेहद की पवित्रता धारण की है। चार दिन पहले साकार मूल्य का मुख्य हेडिंग था, कितना सुंदर पॉइंट है कि तुम बेहद पवित्र हो। अब इस महावाक्य में कैसे हमारे जो ओरिजिनलिटी ओरिजिनल संस्कार हैं, कैसे सुन के खुशी हो जाती है, क्योंकि आत्माओं में जो वो ओरिजिनलिटी है, आदि अनादि काल के संस्कार हैं, वो बेहद पवित्र के हैं। वो महावाक्य सुनते कैसे अंदर में खुशी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती, क्योंकि हमको हमारी चीज वापस मिल रही है, जैसे जैसे गुम हो गई थी। कोई चीज अगर गुम हो जाए और बड़े सालों बाद मिल जाए जिस चीज से हमको लगा हो, तो कितना खुशी होती है। तो जो हमारी बेहद पवित्रता है, जो बाबा ने कहा ये हमारे ओरिजिनल संस्कार है, अनादि संस्कार है, आदि संस्कार है, वो हमको मिल गई फिर से। तो अगर हम ये समझते रहे कि मुझे मेरी गुम हुई चीज वापस मिल गई है, वो मेरे पास है, मैं बेहद पवित्र आत्मा हूं, तो नेचुरली वो उस चीज की स्मृति जो हमारे पास मौजूद है, उसकी जो प्राप्ति है, वो हमारे चेहरे पर स्वतः दिखाई देगी कि किसको गुम हुई चीज मिल गई है, और उसके वाइब्रेशन निरंतर स्वतः फैलते रहेंगे। तो चलते फिरते हमको कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बाबा का रहे, तो हम उस सोमान में स्थित होकर निरंतर और सह सेवा कर सकते हैं। तो कितनी सुंदर स्मृतियों से बाबा ने हम सबको श्रृंगार दिया, कितना बड़ा उपकार है उसका, सचमुच कमाल है, वंडरफुल है। बाबा कहते कुदरती ज्ञान दे रहा हूं, उस दिन था ना मुरली, मैं तुमको कुदरती ज्ञान दे रहा हूं। ऐसा मावा के कौन सुनाएगा संसार। तो दो बातें हमको याद रखनी है, संपूर्णता और समानता, संपूर्ण बाप और संपूर्ण सेज, ये दोनों जैसे हम सब बच्चों को बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? आओ श्रेष्ठ आत्माएं, आओ बच्चे, समान बच्चे, समर्थ बच्चे, अपने स्वीटों में क्या बनो? बाबा ने कहा विश्रामी बनो, वहां विश्राम करो। अब सारे दिन में क्या करेंगे, कितनी सेवा, गर्भ गर्भ में बैठे हुए हैं, भले थोड़े थोड़े खुलने भी लगे, लेकिन फिर भी जितना समय हमको मिल रहा है, तो बाबा कहते बतन में तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो तुमको क्यों में आना पड़ता है, पूछना पड़ता है, ये करना वो करना, तुम बतन में जब मर्जी आ जाओ। तो हमको अधिक से अधिक सूक्ष्म बतन में जाने की प्रैक्टिस करनी है, अपने मूल बतन में जाने की प्रैक्टिस करनी है, जो हमारा स्वीट साइलेंस हो, में लंबे समय तक हम बाहर रहे, सूक्ष्म बतन में रहे, फरिश्ते स्थिति का अनुभव करें, बाबा से जैसे वरदानी हस्त हमारे सिर पर है बाप दादा के, उसका अनुभव करें, या परम धाम में मैं अपने बीज रूप स्थिति में स्थित हूँ उसका अनुभव करें, परम धाम की शांति कैसी है उसका अनुभव करें, कैसे आत्मा वहां चारों चारों जगमगा रही, उस दृश्य को बार बार अगर हम इमर्ज करें, अर्थात इस साकार दुनिया से, देह की दुनिया से उपरेम रहने के लिए हम सबको ये स्मृतियां बार बार बुद्धि में दोहराने की जरूरत है, तो हम इस दुनिया से उपराम हो पाएंगे। क्योंकि इस दुनिया के तो बहुत सारी बातें हमने पकड़ के रखी थी अनेक जन्म तक, अब उनसे हमारी इतनी गहरी अटैचमेंट हो गई है कि उनको छोड़ना जो है मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा हम सबको इतनी सुंदर सुंदर युक्तियां बताते हैं कि बार बार अपने को अपने घर में विश्रामी बनो, समर्थ बच्चे हो, समर्थ बाप के बच्चे हो, तो ये हमको स्मृतियां रखनी है। तो बाबा जैसे पुकार रहे हैं हमको, हमारी स्टेज पुकार रही है, ये हमको स्मृति रखनी है। बाबा कहते जैसे बाप दादा विदाता है, बरदाता है, ऐसे तुम बच्चे भी बनो, तुम फरिश्ता सो देवता, ये मंत्र, ये महामंत्र निरंतर स्मृति में रखो। फरिश्ता क्या करता है? देता है, लेता नहीं है। तो तुम्हारे देने के संस्कार है, लेने के संस्कार नहीं है। देवता देता है, लेता नहीं है, तो लेवता के संस्कार नहीं है, देने के संस्कार है। तो ये बाबा कहते मन मना तो ही है, ये तो आपका आदि का मंत्र है, लेकिन अभी समर्थ मंत्र कौन सा है कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। तो चलते फिरते भी हम सबको ये स्मृति रहे कि मैं फरिश्ता हूं सो देवता हूं। अब ये दो वर्ल्ड हम अगर देखें, तो अगर हमको ये स्मृति रहे और अंदर ही अंदर हम इसका विस्तार करते रहे कि फरिश्ता कैसे चलता है, उसका उठना बोलना, वो कहाँ रहता है, वो इस सृष्टि पर क्यों आता है, उसका क्या कर्तव्य है, उसके संस्कार कैसे होते हैं, ये चलते फिरते अगर हम स्मृति में रखें, तो भी हमारा जो परिवर्तन का जो बाबा के लिए वर्षन है, ये वर्ष है परिवर्तन का और पुरुषार्थ का, तो हमको महसूस होगा सचमुच इस वरदानी वर्ष का जो हमको फल मिलना चाहिए वो हमको मिल रहा है, अर्थात हमारी प्रगति हो रही है। तो चलते फिरते हमें महामंत्र, जो समर्थ महामंत्र, बाबा ने परिश्रम सुदेवता, ये हमको निरंतर स्मृति में रखना है कि मैं फरिश्ता हूँ, शुद्ध देवता हूँ, देवता अर्थात सर्वगुण संपन्न हूँ, 16 कला संपूर्ण हूँ, हर्षित मूर्त हूँ। जरूरी वो वाली परिभाषा जो बाबा ने बताई, हम सबको अपनी क्रिएट करनी है। हर्षित मूर्त हूँ, सबको मीठी दृष्टि से देख रहा हूँ, सबको देवता या देवी स्वरूप में देख रहा हूँ, अपने स्वर्णिम दुनिया के नजारे हमारी आंखों के सामने बाबा ने कहा वो इमर्ज करो। तो ये सब हम सबको इमर्ज करना है। तो ये समर्थ मंत्र जो हमको याद रखना है कौन सा, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। तो ये बाबा ने कहा याद रखो। इसमें बाबा ने कहा ये होना चाहिए, मिलना चाहिए, ये नहीं, क्योंकि परिस्थितियां अनेक प्रकार की आएगी, तो हम ये नहीं सोचे ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल संडे की साकार मूल्य में विता काल कि ड्रामा में कोई बच्चे कहते हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन है वो कह ही नहीं सकते, रूली नहीं है ये, है नहीं प्रश्नोत्तर में। तो इस मूल्य में ये जो दो बातें, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये सारे अलवेलेपन के संस्कार है, ये जो है ये लेवता के संस्कार है। तो लेवतापन के संस्कार क्या करेंगे फिर, वो देवता बनने में समय डाल देंगे, अर्थात वो अंतर डाल देंगे। तो इन संस्कारों को समाप्त करना है। और कौन से संस्कार इमर्ज करने हैं, बाबा ने कहा सब चीज में नंबर वन आओ। अगर हमको नंबर वन आना है तो इधर उधर हमको नहीं देखना है। अगर हमने इधर उधर देखने में समय गवा दिया तो हम लक्ष्य पर, मंजिल पर, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर नंबर वन पहुंचना है तो सीधा हमारी जो यात्रा है वो सीधी लेनी चाहिए। तो किस किस में नंबर आना है, बाबा ने कहा ब्रह्मा के घर में, नए जीवन में, नए युग में नंबर वन में आओ। फिर सतो प्रधान प्रकृति है, प्रकृति सतो प्रधान नंबर वन, अर्थात वो पहले दिन में आओ। फिर संबत भी वन वन हो, राज्य भी नंबर वन हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर वन हो, अर्थात पहले दिन में आओ। एक दिन के फर्क में भी वन वन से अंतर तो पड़ जाता है ना बाबा, वो बदल जाता है। तो बाबा कितना कह रहे हैं कि हमको एक नंबर में है। जैसे मान लीजिए हमको एक टॉप की पहाड़ी है, अब जो व्यक्ति टॉप पर जा पहुंच गया है वो तो सारा कुछ देख रहा है, उसको कितनी खुशी है मैं मंदिर अचीव कर ली, और एक व्यक्ति है केवल दो कदम नीचे रहा, तो फिर भी अंदर में तो टीस रहेगी ना उसको। हालांकि सत्ययुग में हमको ये पता नहीं होगा कि मैं अभी अभी आया हूं तो पीछे से बीत चुका है। हाँ बाद में इस चीज जाकर पड़ेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन दुख की तो बात नहीं है वहां। लेकिन अभी तो हमको पता ना कि अगर आप वन वन में आएंगे तो उसकी खुशी, और बाद में आएंगे उसकी खुशी, वो जीवन मुक्ति अवस्था का अनुभव तो अभी हम कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा नंबर वन आसव, वो खुशी, वो नशा, वो अभी हमको इमर्ज रखना है हमेशा। तो ये मिलना चाहिए, होना चाहिए, इन बातों को छोड़ दो, अपना नंबर वन में आने का लक्ष्य रखो, इसमें लगेगा, ये करना है। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं फरिश्ता सुदेवता के जो बहुत काल के लंबे समय के प्रैक्टिकल संस्कार हैं, ये धारण करो। नहीं तो क्या होगा, बाबा कहते बहुत काल की जो समय की सीमा है वो अब समाप्त हो रही है ना, उसकी डेट गिनती नहीं करो। विनाश काल को, विनाश काल तो अंत काल का बाबा के, उसमें तो प्रसाद नहीं कर पाएंगे। और कहा था अंत मत सो गति, जो अंत की गति, और अंत में कौन सी गति होती है, जो लंबे समय का हमारा अभ्यास है वो अंतिम गति होगी सीधी। तो अभी भी हमारा अगर लंबे समय कुछ कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमको बार और अंदर में सूक्ष्म रूप से दुख अनुभव करा रही है, असंतुष्टता का भाव पैदा कर रही है, तो अभी भी हमको परिवर्तन होने का बहुत बड़ा ये गोल्डन जो चांस बाबा दे रहे हैं, इसको हम क्यों गुवाए हाथ से, इसको हम पूरा सदुपयोग करें।
मूंझने के,
हाँ मूंझने के संस्कार है, वो भी बाबा ने कहा कौन कौन से संस्कार है। तो निरंतर स्मृति स्वरूप बनना। तो बाबा भी समाप्त, जो बहुत काल का जो ये समय है इसकी समाप्ति का इशारा दे रहे हैं कि अब समाप्त हो रहा है, अभी थोड़े काल का जो अंतिम समय है वो शुरू हो रहा है। तो हमको कितना चेत कर रहे बाबा ने। फिर इसमें क्या देखना, कर्मों का खाता अब क्या हो रहा है, बाबा के कर्मों के खाते में क्या हो रहा है, अभी बहुत काल खत्म हो रहा है, अभी थोड़ा समय और अल्प काल का आरंभ हो रहा है, मतलब थोड़ा समय रह गया, इस थोड़े समय में हमको जो करना है वो कर लेना है।
थोड़े समय में भी बहुत कुछ हो सकता है,
बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो बहुत कुछ भी तब हो सकता है, अभी भी हमको पूरी क्लैरिटी चाहिए। हालांकि क्लैरिटी तो हमको ये भी है कि हमको जो पहले बीत चुका समय और उस समय में जो हमको करना चाहिए था और जो हमने नहीं किया वो तो हमको पता है, तो उसको भी सामने रखते हुए अगर हम फिर से करने लग जाए जो चीज हमको नहीं करनी चाहिए उसको छोड़ के और जो करना है वो करने में लग जाए तो भी आगे जा सकते हैं। तो दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय अपने अंदर में करके तो हमको आगे जाने का बहुत चांस है। बाबा कहते बहुत काल का हिसाब जितना जमा करने चाहो अब भी पुरुषार्थ से कर सकते हो। इतना पुरुषार्थ करने के लिए बाबा हमको वरदान दे रहे हैं शायद पुरुषार्थ। तो बाबा कहते कर्मों की गति को जानो, उलाना नहीं देना। उलाने की बात यहां बाबा ने बोली कि फिर ऐसा बाद में उलाना नहीं देना, उलाना देने वाले नहीं बोला कि हम तो अलवेले होकर चल रहे थे आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। बाबा कहते तो कर्मों की गति को जानो और नॉलेजफुल बनो, नॉलेजफुल बनो और फिर क्या करो आगे बढ़ो। समझे हर बात की भी कि ड्रामा पूरा हो रहा है, नॉलेज है पूरी है। नॉलेज के लिए बाबा ने बहुत पॉइंट हो तुम बच्चे बाप से भी ज्यादा दे सकते हो। फिर बाबा कहते कोई कोई बच्चे कहते ऐसा ना हो कि 2000 का हिसाब लगा रहे हैं कि अभी 15 साल रह गए या 18 साल हो गए या 2000 में पूरा हो जाएगा। इस समय के हिसाब को छोड़ दो, समय तो कभी भी आ सकता है। तो 99 में होगा ये सोचते रहना, इस गति को छोड़ दो। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ये हिसाब को ये बुद्धि नहीं होना चाहिए हमारी,
इसी गति से चलो साथ उस परिवर्तन के
हो रहा है। गति होनी चाहिए प्रारब्ध और परिवर्तन, पुरुषार्थ और परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं ये भी आप देखो, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, जो बहुत काल के अगर पुराने संस्कार रह गए तो कहां जमा होंगे, वो धर्मराजपुरी के खाते हुए जमा होंगे। बाबी तो खाते लगे हुए हैं ना धर्मराज की पुरी में, वास्तव में धर्मराजपुरी तो हमारे अंदर ही है। धर्मराजपुरी क्या सजन, अब सवेरे से शाम तक हमको बताया गया भगवान की श्रीमत मिली है, भगवान ने हम सबको सवेरे काम दे दिया कि शाम तक तुमको ये करना है। अगर हम उस काम को नियम पूर्वक मर्यादा प्रमाण करते रहे अपनी पूरी शक्ति से और निश्चित तौर पर शाम तक हमने जितना किया तो हमको खुशी होगी उसकी, और उस काम को अगर हमने नहीं किया या कुछ किया कुछ छोड़ दिया, कुछ मन माता है कुछ परमाता है कुछ प्रपंच किया कुछ श्रीमत भी डाल दी बीच में, तो शाम को हमको खुशी नहीं होगी। तो धर्मराजपुरी तो हमारे मन में ही है, वो बाहर थोड़ी नहीं है, तो खुशी नहीं होगी। माना क्या है, धर्मराजपुरी की सजा मिल गई, मन में डंडे खाते रहते हैं, स्वयं के संकल्पों के डंडे हमको ही पीट रहे हैं। तो वास्तव में धर्मराजपुरी भी साथ साथ ही चल रही है। तो अतीन्द्रिय सुख का खुशी का अनुभव अभी हमको करना है। तो ये इस वर्ष को बाबा ने कहा इस विशेष वर्ष को वरदान है, कौन सा 50 वर्ष के समान है ये, इसको गवा नहीं देना है। माना जो पुरुषार्थ हम 50 वर्ष नहीं कर पाए वो इस एक वर्ष में हम कर सकते हैं। कितनी बड़ी हमको लॉटरी दे दी उसने, कितना बड़ा चांस दे दिया, कमाल है, वंडरफुल है। अर्थात वो बाबा कहते थोड़ी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद बाबा की मिलेगी इसमें। फिर इसमें बाबा फिर सचेत भी करते हैं कोई कोई बच्चे जो हैं जिनके व्यर्थ कर्मों का खाता और यथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी बहुत, बाबा आउट नहीं करते, चाहे तो आउट कर सकते हैं लेकिन आउट नहीं करते हैं क्योंकि वो रहम का सागर है, स्नेह का सागर है, वो एक्स्ट्रा गोल्ड चांस का वर्ष है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में ये गोल्डन चांस के वर्ष में हिम्मत और मदद ये दो बातें बाबा ने जिक्र किया। हाँ ये वरदानी वर्ष है, इसे एक्स्ट्रा हमको मिलेगा। तो 50 वर्ष के समान गवा नहीं देना, जो 50 वर्ष हमने नहीं किया वो इस एक वर्ष में हम गवा कर सकते हैं। क्या बात है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, कितना बड़ा मौका है सचमुच। अभी भी अगर पिछले कुछ भी किया हमने, कुछ भी किया उसको हम छोड़ दें और अभी से पुरुषार्थ कर दें, कितनी बड़ी खूबसूरत बात है,
और मजा आएगा,
और मजा आएगा बिल्कुल।
और मतलब उनको कम समय में ज्यादा कुछ
अचीव बिल्कुल मना कर सकते हैं वो, मतलब हमारे रास्ते सारे क्लियर हैं। जो भी बिघन आएंगे उनको भगवान किनारा करने के लिए बैठा हुआ है। हमारे पुरुषार्थ की स्पीड करने के लिए हमको पीछे से फोर्स देके आगे बढ़ाने के लिए वो हमारा बैकबोन बन गया है। कितना इक्वल 50 वर्ष का समय और एक वर्ष का समय।
वास्तव में जो स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं ना, तो जो गैप रहते हैं जिस एग्जाम में ना, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, जिसमें कम गैप रहता है।
बिल्कुल बिल्कुल, कम गैप में ज्यादा मार्क्स ले लेते
हैं, वो करते हैं
क्योंकि फोर्स आ गया अंदर में, एक उमंग सा की ऊर्जा का नया संचार हो गया वो, क्योंकि उसमें और टीचर भी देखता है कि बच्चा भी कुछ करना चाहता है, तो टीचर निश्चित तौर पर उसको अपने स्कूल की इमेज को या अपनी भी मेरा भी क्या होगा तो उसको फोर्स से उसको आगे बढ़ाता है। तो भगवान भी के भी हम बच्चे हैं, वो भी तो संसार के सामने रखेगा ना कि संसार में, संसार भी देखा जाए भगवान के बच्चे इतने सालों से पढ़ रहे, इन्होंने नहीं परिवर्तन किया तो क्या करेंगे। तो भगवान हम सबको इस एक थोड़े से समय में उतने परिवर्तन करने का सामर्थ्य ताकत हमारे में भर रहा है, वो हमारे सारे रास्ते क्लियर कर रहा है, हमारे सारे बहुत सारे ऐसे विघ्न है जो वो सूक्ष्म रूप से हमारे विघ्नों को स्वतः नष्ट करता रहता है। पता नहीं कौन कितने कितने बड़े विघ्न है जो हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं और भगवान हमारे उन विघ्नों को अपने आप ही खत्म कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हम तो निर्विघ्न है। सूक्ष्म रूप से हमारे रास्ते में पता नहीं कितने कांटे पड़े हुए हैं जिन कांटों को वो फूल की तरह बना रहे, और उस अल्पकाल के मदद को ही कम हम ये ना समझ ले कि ये तो मेरा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कब तो एम आया था तुम्हारा, उसकी मदद है सूक्ष्म रूप से हर बात में, चाहे वो हमको कोई समय मिल रहा है, चाहे वो हमारे पुरुषार्थ की यात्रा थोड़ी आगे बढ़ रही है, या थोड़ा हमको मुरली पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है, या मुरली के पॉइंट थोड़ी बुद्धि में ठहरने लगे हैं, ये सारी उसकी कृपा है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। हम अपने सब ब्राह्मण लाइफ को देखें ना, क्या थे हम पहले और क्या करेंगे। ये जो बाबा ने पीछे बताया परिवर्तन कितना बड़ा हुआ, तो किसकी ताकत है ये, उसके ज्ञान की एक एक बूंद जैसे हमारे लिए कितनी बड़ी संजीवनी है, एक बूंद ने हमको सुरजित कर दिया है।
कल देखा कि 7-8 साल तक जो नहीं किया वो इस इधर पे 6-7 महीने
बताइए, जो 7-8 साल नहीं कर पाए और इन 2-4 महीनों में आपने कर लिया, तो नेचुरली वो किसकी ताकत है, किसकी मदद मिली है, आपकी हिम्मत और उनकी मदद। तो हिम्मत हम रखे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी मदद तो छिम छिम बरस रही है ऊपर से, किसी न किसी तरीके से, चाहे वो किसी को निमित्त बनाकर, चाहे वो खुद ही सूक्ष्म रूप से हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाकर हमको हमारी परिस्थिति को खत्म कर देगा, हमारे रास्ते क्लियर कर देगा। तो भावने का समय का लाभ लो, ये समय देखो कितनी बड़ी बात, हम भी पढ़ रहे थे तो एक एक बात इस वर्तमान समय से लग रही है मुरली के द्वारा,
अभी तो त्रिकालदर्शी उसको
बिल्कुल त्रिकालदर्शी
त्रिकालदर्शियों के
बिल्कुल। तो समय का लाभ लो क्योंकि अभी स्नेह का सागर बाप है, संबंध के स्नेह में अलवेलापन साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी ना सुन ना देख बाबा बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मार्च देकर आगे बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मदद दे रहे हैं, एक्स्ट्रा स्नेह दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मदद दे रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं, मार्च लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। एक मिनट इसको गहराई से पढ़ो कितना मजा आता है। इसलिए हम देखा जो एक मुरली होती है अव्यक्त रूप से अव्यक्त वाणी, तो हमको थोड़ी थोड़ी रोज पढ़ती जानी चाहिए, जैसे आने वाले संडे की होती है तो उसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे उस मुरली से हमारी अटैचमेंट लगाव हो जाता है और धीरे धीरे हमको अपनी कमजोरियों को निकालने का एक मौका मिलता है, उसमें पता चलता है सूक्ष्म रूप से मेरी क्या कमजोरी है, और देखो भगवान की मदद कैसे मिल रही है ये भी महसूस करती हूँ। तो बाबा ने कहा भी समय का लाभ लो, अभी स्मृति स्वरूप बनो, स्मृति और विस्मृति ये छोड़ दोगे क्योंकि 18वें अध्याय आरंभ हो गया बाबा, 18वें अध्याय की विशेषता क्या है, स्मृति स्वरूप बनो, नष्ट मोह बनो। तो बहुत काल स्मृति क्या कर देगी, स्वतः और सहज ये रहे, अब युद्ध के संस्कार छोड़ दो, मेहनत के संस्कार छोड़ दो, मन को मुझाने के संस्कार छोड़ दो, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही जो बहुत काल के जो संस्कार है जो बताया पहले जिक्र के अंतमति सुगति हो जाएगी। तो अभी बहुत काल का समय समाप्त हो रहा, बाबा कहते कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है, जो भी हमारी कमजोरी है वो भी सारी निकल के सामने आएंगी, क्योंकि अंत में जो अंतिम पेपर मुख्य रूप से है हमारे पुराने संस्कारों का, हमारी पुरानी कमजोरियां निकल के आएंगी, और उन पुराने संस्कारों को कमजोरियों को समाप्त करने या उनसे किनारा करने या उनसे मुक्त होने का अभी इसमें मिला हमको।
घबराना नहीं
किसी सूरत में, कल साकार वाणी में था, खराब खराब ख्याल आ रहा है, जो ख्याल में भी सोचा होगा वो भी आएंगे, लेकिन तुमको घबराना नहीं है, सुप्रीम सर्जन तुम्हारे साथ में, और निश्चित तौर पर वो तो आएंगे ना, क्योंकि हमने तो बीज बोए हुए हैं, लेकिन हमको वहां अचल अडोर अडिग रहना है, और वहां हमको परहेज रखते हुए बाबा की मदद से, उसकी शक्ति से, उसकी ताकत से निकल जाने।
वो होता ही है ना, जैसे गंदा पानी है वो साफ डालेंगे तो ऊपर
नेचुरली वही बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे एक दिन पानी डालते रहो अंदर का सारा गंद निकलेगा। इस तरह ज्ञान जल से अपने को डेली स्नान कराते रहना, वो आत्मा उस ज्ञान में डूबी रहेगी तो निश्चित तौर पर उसके अंदर का कचरा सारा निकल जाएगा, ज्ञान सागर में अपने आप को डूबोगे रखना। एक सुंदर वाक्य महावाक्य था ना, आज ज्ञान सागर बाप ज्ञान गंगाओं में स्नान करने आया हो, सुना आपने पहले? एक अव्यक्त वाणी में था वो श्रद्धा रंजी ने सुनाई थी कॉन्फ्रेंस ऑफिस में, तो कैसे आंख से आंसू भी आ गए, सचमुच कितना ज्ञान, कितनी निर्माणता उसकी, निरंकारिता, क्या ज्ञान सागर बाप ज्ञान गंगाओं में डुबकी लगाने आए, ज्ञान स्नान करने आए।
बाबा ने बोले ना कि तुम्हारा ज्ञान मुझसे भी ज्यादा है, तुम्हारे पास
मेरे से भी ज्यादा है, मेरे से भी ज्यादा, तो निर्माणता अपने दिखा रहे थे बाबा। तो स्वयं को जो बाबा कहते हैं, अभी मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार, मोन जाने के संस्कार समाप्त करो, निरंतर स्मृति स्वरूप बनो, विस्मृति स्मृति इस खेल को छोड़ दो, निरंतर स्मृति स्वरूप, क्योंकि ये बहुत काल के जो संस्कार है वो अंतमति स्वरूप करेंगे। तो हमको बाबा बार बार कदम कदम और हमको कितना सचेत कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं पॉइंट बनो, अब बाबा कहते हैं मोह की लिस्ट तो बड़ी लंबी हो गई है, कौन कौन सी मोह की बताए, स्व की प्रवृत्ति, परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, फिर हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, तो इनसे हमारे कहां ना कहीं मोह है, अटैचमेंट है, लगाव है, हमको चेक करना है, अब सबसे ऊपर हम होना है, किनारे हो जाना है।
इस परिवार से तो नहीं है, जब दैवी परिवार
बिल्कुल लौकिक परिवार से छूट के दैवी परिवार से भी होता है, इससे भी हमको उस लोहे की जंजीर को छोड़ के हमने हमने इसको सोने की जंजीर को पकड़ लिया, जंजीर तो जंजीर ही है, तो इससे डिटैच हो जाना। ये सब अटैचमेंट मोह के जो धागे हैं सूक्ष्म रूप से, जिन्होंने हमको जकड़ के रखा हुआ है, जो हमको बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि लोहे का कड़ा उतारना तो आसान है, लेकिन सोने की जंजीर उतारना मुश्किल होती है थोड़ी, उसको बड़े प्यार से संभालेंगे, खुशी के लिए तो भी चिंतन चलेगा उसका। तो हमारे आसपास के जो भी अलौकिक संबंध है या जिनसे हमको सहयोग मिलता है, उनको भी सुख, क्योंकि हमको उनको पकड़ के नहीं, उनको सहयोग देने के लिए किसने प्रेरित किया, उपपाल, तो हमको अंदर में स्मृति रखी है, हमको बताने की जरूरत नहीं है हमके अपने साथी को कि हम आपके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, अपने अंदर रखना, हम भले उसको हम कह सकते कि हमारे पुरुषार्थ में, लेकिन अंदर की जो हमारी वृत्ति है उनसे अटैचमेंट नहीं मिलेगी। ये तो ऊपर वाले ने उनको प्रेरित किया हम आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए,
वास्तव में उसकी कृपा है,
उसकी कृपा,
अगर भूल नहीं होता तो वो आत्मा
कुछ भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, उसी की बदलत तो सब कुछ है,
तो कोई प्लानिंग है,
प्लानिंग है, तो नष्ट जो भी मोह के हैं हमारे अंदर बातें, बाबा कहते ये छोड़ दो, एक एक जो प्रवृत्ति है उनसे निवृत्त होने का राज, तो बाबा कहते चित्र जानते हो, यहाँ जो आप कह रहे हैं बार बार जो भाषण की बात, पॉइंट तो अनेक है, भाषण तो आपके बाबा कहते बाप से भी ज्यादा कर सकते हो, पॉइंट तो बाप दादा से भी ज्यादा है, लेकिन अभी क्या करना है, पॉइंट बनना है, ये यहाँ फिर तो यहाँ मुरली पूरी रहती है, यहाँ फिर बाबा बच्चों को याद प्यार नमस्ते करते हैं, और फिर बाबा दादियों से मिलते हैं, दादियों से क्या कहा, घर का गेट कौन खोलेगा, गोल्डन जुबली वाले, सिल्वर जुबली वाले, तो इस वर्ष में सिल्वर जुबली वाले भी आए थे, तो बाबा पूछ रहे हैं, तो बाबा कहते कौन गेट खोलेगा, जो घर का गेट खोलेगा वो ईश्वर का गेट खोलेगा। तो इसमें बाबा एक बात और कह रहे हैं कि सजनी बन के जाएंगे या बराती बन के जाएंगे, तो ये भी देख रहे हैं, भले पीछे पीछे जाएंगे लेकिन बराती तो होंगे ना, संबंधी भी बराती कहे जाते हैं, तो कौन गेट खोलेगा, तो बाबा ने कहा जो घर का गेट खोलेगा वही स्वर का गेट खोलेगा। और यहां एक और बाबा ने बात कही जो पहले भी जिक्र किया कि बतन में आने के लिए कुछ समय की जरूरत, पूछने की जरूरत नहीं किसी को, टाइम की जरूरत नहीं है, जब मर्जी आ, साकार में तो फिर भी क्या करना पड़ता है, बंधन है, समय का सरकमेंट सांस है, अनेक परिस्थितियां हैं, यहाँ आने के लिए वहां से इधर आओ ये करो, लेकिन बाबा के और मूल्यों में जिक्र कहते ना कि मन के प्लेन में बैठो और एक सेकंड में उड़ के आ जाओ मेरे पास, जितना मर्जी इसमें रहो, तो कोई रोकेगा नहीं, कोई टर्न लगाने की जरूरत नहीं है, अभ्यास ऐसा, यहाँ हमको बाबा एक और चीज सूक्ष्म रूप से अभ्यास ऐसा कर ले कि ऐसा अभ्यास होगा कि एक सेकंड में जैसे शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगा के आ गए। इसमें बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के दो तीन एग्जाम्पल दिए बाबा यहाँ पर कि ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, अनेक प्रकार की बातें सुनते हुए जैसे लगता था बाबा यहाँ नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं होता कि जैसे बाबा ने बात नहीं सुनी। ये जो गति इतनी फास्ट है जो अंतर आत्मा की, अंतर चेतना की, कि ऊपर भी हम चक्कर लगा के आ रहे हैं और इधर भी सुन रहे हैं सार सूप में। इसमें बाबा ब्रह्मा बाबा के बाबा ने दो एग्जाम्पल दिए कि अनेक प्रकार की बातें बाबा होते हुए भी जैसे शरीर से डिटैच रहते, सब अनुभव करते थे अंत में। तो ये अशरीर बनने का हमको बार बार अनुभव करना है, अनुभव करेंगे जैसे बाबा कहते ना एग्जाम्पल दे, बटन दबाया उड़े चक्कर लगाया वापस आ गए एक सेकंड में। तो हमको सूक्ष्म रूप से एक सेकंड भी बल्ले, एक सेकंड में डिटैच हुए, बाबा को टच किया, अपने आप को चार्ज किया, सारे संसार को दृष्टि दी, वापस अपनी देह में। तो ये बार बार हमको ब्रह्मा बाबा के समान अनुभव करना है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। तो इसकी बहुत, इसमें बाबा ने एक चीज की आवश्यकता है, कौन सी, समेटने की शक्ति। हमको जो आसपास हमने विस्तार करके रखा हुआ है किसी रूप भी रूप से है, वो हमको समेटना है, चाहे वो किसी से बातें करने का है, चाहे वो किसी से फोन करके बात करने का है, या सोशल मीडिया के ऊपर जो हम विस्तार करके रखा हुआ है, या दूसरी सेवाओं का विस्तार कर रखा हुआ है, अनावश्यक बातों का विस्तार करके रखा हुआ है, साधुओं का विस्तार करके रखा हुआ है, जहां जहां हमारी बुद्धि जा रही है उसको भी समेटने की जरूरत है, तो हम ये उड़ान भर सकेंगे। अभी अभी हैं, अभी
बुद्धि विशाल हो जाएगी,
बुद्धि विशाल हो जाएगी उसमें, क्योंकि हमने अपने बुद्धि को बहुत सारी बातों से बांध के रखा हुआ है,
बटा हुआ है,
बटा हुआ है,
बुद्धि टुकड़े टुकड़े
बिखरा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया है।
ये सेवा करनी है, अभी भी साइलेंस का समय है, साइलेंस नहीं बैठ रहा है।
हाँ, साइलेंस का समय पता भी हमको है, फिर भी नहीं बैठ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने विस्तार कर रखा हुआ है, विस्तार खींच रहा है, बुद्धि में भाई भरा पड़ा है,
इसका क्लास क्लास में भी फ्रस्ट्रेशन हो गया,
बिल्कुल हो गया, वो तो है, वही हमको कई बार कहते हैं अभी 15 मिनट सुना दो, ये कर दो, इससे भी ऊपर होना है,
वास्तव में और व्यस्त, मतलब अपने आप को फंसा लिया है,
बिल्कुल 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 एडिक्शन है एक चीज की।
अभी अब ऐसा लग रहा था कि डिपार्टमेंट में चलो थोड़ा सेवाएं कम हुई, लेकिन और बढ़ा दिया, इधर हर एक मिनट में ये वेबिनार करना है, इसको अपने को तो व्यस्त रखा और भी लोगों को फंसा लिया,
बिल्कुल। इसमें देखिए जितना अभी हम साइलेंस में रहेंगे लोगों की स्वतः नजर इधर आएगी, क्योंकि बाबा ने कहा साइलेंस में बल है, साइंस के ऊपर विजय पाने के लिए साइलेंस में ताकत है, वो तो हम साइंस के साधनों में फंसने के बजाय साइलेंस के शक्ति का प्रयोग करें और उसका अनुभव करें, लोग अपने आप सूक्ष्म रूप से हमारे जो संकल्पों की सेवा है वो वाणी से थोड़ी नहीं होगी, संकल्पों से सेवा करने का। अभी बाबा ने कहा ना पिछले संडे की मुरली में, पिछले संडे कि अभी रिसर्च करो, प्रयोगशाला में जाओ, अंतर्मुखता की गुफा में बैठो, तो ये अभी हमको बैठने का टाइम है, इसमें हमको बिल्कुल डीप साइलेंस में जाके अपने संकल्पों की शक्ति का जो बाबा ने हमको बताया प्रयोग करो, वो करने का टाइम है,
अपना जो ऊर्जा है वो बढ़ाने का टाइम है
अपने, बिल्कुल
है कि जब एक स्लोगन हमने पढ़ा था कि जितने कम बोलोगे उतना लोग ज्यादा सुनेंगे,
हाँ जितना कम बोलोगे उतना लोग ज्यादा सुनेंगे,
और अपन क्या है इस समय कम बोलना था
और
साइलेंस होना, क्योंकि फिर ढूंढेंगे लोग,
बिल्कुल
एक्चुअली शांति की बात करते थे, इस समय क्यों साइलेंस,
बिल्कुल हाँ,
और अभी अपन इतना बोले लोग पक गए,
पक गए। देखो तो ये भी हमको देखना है, तो विस्तार को समेटने की शक्ति चाहिए, वो प्राइम रहना है इससे बाबा ने कहा, तो ये हमको देखना है कि कहाँ कहाँ हमने विस्तार रखा हुआ है, तो ये शरीरपन की अवस्था का करना है, इससे सेवा की गति फास्ट हो जाएगी, बुद्धि विशाल हो जाएगी, तो ये करना है। फिर बाबा ने कहा अंत में फरिश्तेपन का जो अभ्यास है आपका, फिर साक्षात्कार कराएगा, वो एक्चुअली देखो साथ साथ में अभी भी है, हर आत्मा का भाग्य भी है, कुछ एक बातों को हमको, बहुत सारी बातों को अपने आप को समझना भी है, ड्रामा के हर राज को समझना है। तो जैसे कल बाबा ने, या हम कोटेशन पढ़ रहा था जो हमने स्टेटस में डाला था, कि अगर दूसरों को हम अपनी दृष्टि से देखें तो दोष ही दिखाई देते हैं, भगवान की दृष्टि से देखो, साक्षियों के देखो तो सब निर्दोष है,
खेल समझ
आय का प्रधान भी ड्रामा के ऊपर ही है सारा खेल, वो भी है स्लोगन भी था एक, तो ऊंचे ऊंच जाने से नीचपन अपने आप ही छूट जाएगा, अगर ये हमारे प्रयास होता रहेगा, बाबा कहते मेहनत भी बच जाए, मेहनत से बचे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट हो जाएगी, कितनी बातें हैं। फिर बाबा सिल्वर जुबली वाले में जो भाई बहन है उनसे बाबा मिलते हैं, तो इसमें बाबा ने मुबारक दी उनको। कौन कौन सी मुबारक दी? एक सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाटदारी, सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे इस महायुग के महान पाटदारी जो सिल्वर जुबली वाले आए, वो 25 साल दिन को ज्ञान मिले, तो बाबा ने उनको ऐसे उपरवर्त वृक्षों को मुबारक दी, ये सुहावने जीवन की मुबारक। फिर दूसरी मुबारक दी, ये सेवा में वृद्धि बनने के निमित्त बने, ये विशेष भाग्य आपका, ये भी मुबारक दी। फिर तीसरी मुबारक दी कौन सी? परमात्म स्नेही और सहयोगी बने, सैंपल बनने की मुबारक दी, घर में रह रहे हैं सैंपल है सबके सामने, मुबारक दी इसकी। फिर चौथी मुबारक दी, समय की समस्याओं के तूफान जो आ रहे हैं, अनेक प्रकार के तूफान, उनको तोहफा समझ के पार कर रहे हैं, विघ्न विनाशक बनने की मुबारक दी। तो ऐसे बाबा ने अनेक प्रकार के अनुभवों से खजाने से संपन्न वो जो फाउंडेशन बचे हैं उनको देख के बाबा हर्षित हुए बहुत, क्योंकि उन बच्चों के साहस के गुणों की माला से मनन करते हैं। कितना सुंदर सेंटेंस है कि बच्चों में साहस है और भगवान उसकी माला से मनन करते हैं, कि ताकत साहस है अंदर में, हौसला है, मानो साहस माना
हौसला है। जब थोड़ा कोई चीज में अपन को मेहनत लगती तो मदद कर देता है,
बिल्कुल जी, हर बात में मदद करता है। तो फिर बाबा ने ऐसे लक्की बच्चों को वरदान दिए, कौन से कमाल है, भगवान वरदान दे रहे लक्की और लवली, ये अवसर जो है ऐसे सुनहरे वरदान दिए बाबा ने, कौन से, कि एक बाप को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल सफल बाबा, रूहानी जीवन में अमर बाबा, और प्रत्यक्ष फल और अमर अमर फल खाने के पदमा पदम भाग्यवान बाबा, अमर फल खाना आदि का वो अभी वो अनुभव करना है। तो ये 10 बातें थी, कौन कौन सी थी? फिर बाबा ने वरदान में ड्रामा के बारे में बताया कि बाबा ड्रामा की स्मृति में रहना है तो अनेक प्रकार की सेवा करते खुशनुमा रहेंगे। इसमें फिर बताया कि ड्रामा के कई प्रकार के सीन आएंगे, लेकिन उसमें भी हर प्रकार में बाढ़ ड्रामा हुआ, घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला है कि वर्तमान समय कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण है, कल्याणकारी हो गया, जो भी दृश्य सामने आए उसमें कल्याण ही भरा हुआ है, इसमें कल्याण। उस बाबा ने बताया कि कल्याण वर्तमान में दिखाई नहीं दे, लेकिन भविष्य में वो कल्याण समय प्रत्यक्ष अपने आप ही हो जाएगी, ये बात थी। तो इसलिए बाबा ड्रामा की स्मृति से सदा खुशनुमा में रहेंगे और पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी, मुख्य बात यह है पुरुषार्थ में कभी उदासी ना आए, ड्रामा के गहरे राज्यों को समझना है। इसमें एक सचिन भाई की क्लास भी है, उसको हम सुन सकते हैं, ड्रामा के 16 राज ऐसे क्लास है उनकी, है ना, वो भी सुन सकते हैं। तो फिर इस ड्रामा के राज को समझेंगे तो स्वतः अपने आप ही अनेकों की सेवा उतरेगी। और स्लोगन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, शांति की शक्ति, तो हमको सारे दिन में शांत भी रहना है, तो शांति की शक्ति मनसा सेवा का सह साधन है। तो हम अपने मन को भी साइलेंस रखना है, मन को साइलेंस रखना अर्थात इस हद के संसार की बातों को भूल, बेहद के बात की बातों को मन बुद्धि में रखना है, उनका चिंतन करना है, अपनी बुद्धि को बेहद में रखना है। मुरली थी ना 3-4 दिन पहले, उसी मुरली में तब बेहद पवित्रता, और अगले दिन तक तुम बेहद सरकार के बच्चे बने, बेहद सरकार बात, तुम अपना दृष्टिकोण, तुमको बेहद की दृष्टि मिली है, कितनी सुंदर थी बात, तुमने वो बेहद की बातें निकाली थी, क्या क्या बेहद हुआ है, बेहद की प्राप्तियां मिली है, बेहद की दृष्टि मिली है, बेहद का दृष्टिकोण
दृष्टि मिली तो भटकना बंद हो गया,
भटकना बंद हो गया, वो मुरली में था। तो ये शांति की शक्ति जो सेवा का सह साधन है, ये हमको याद रखना है, और जहां शक्ति शांति की शक्ति वहां संतुष्टता है। तो ये 10-12 बातें थी। तो सबसे पहले बाबा समर्थ बाप मिले, समर्थ बच्चों से मिले, क्या क्या देखा कि कैसे दृढ़ संकल्प किया है, निश्चिंत है, निश्चय बुद्धि है कि विश्व को श्रेष्ठ बनाना है, बड़े से बड़ा ये कार्य करना है, सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति देनी है, ये उनका कार्य है, और उनको अटल निश्चय है, क्योंकि भगवान का कार्य परमात्मा कार्य है, ये संसार की आत्माओं का, महान आत्माओं का, धर्मात्माओं का कार्य नहीं है, परमात्मा कार्य, सफल हुआ ही पड़ा है, भावी अटल है, इसमें टल नहीं सकती है। दुनिया वाले लोग क्या सोचते हैं, अनजान आत्माएं, शांति होगी, कैसे होगा, क्या होगा, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, ना उम्मीद हो गई, तो वो लोग डर रहे हैं विनाश की काली घटाओं से, और तुम्हारी आंखों के सामने स्वर्ण दुनिया के नजारे हैं, तुम खुशी के घुंघरू पहन के नाच रहे हो, सूर्योदय स्वर्णिम दुनिया का सूर्योदय हो पड़ा है तुम्हारे सामने, इतने सुंदर दृश्य है। फिर बाबा ने 2 बातों के बारे में कहा, कि संपूर्णता संपूर्णता और समानता इसमें स्थित रहना। तो हमको हमेशा अपनी ओरिजिनल जो हमारी अंतिम स्टेज है, जैसे बाबा कहते हैं फरिश्ता तुम्हारी विजय माला लेकर आह्वान कर रहा है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप तुम्हारी संपूर्ण स्टेज तुम्हारे आह्वान कर रही है, बाप समान संपूर्ण स्टेज आह्वान कर रही है। तो हमको ये 12 सारे दिन में समृद्धि रखनी है। तो बाबा कहते जैसे बाप विदाता और बरदाता है, ऐसे तुम बच्चे भी फरिश्ता सुदेवता ये मंत्र जो समर्थ मंत्र मिला है इसको सदा स्मृति में रखो। मन मना बाप तो हो ही हो, किसी न किसी तरीके से बाबा को याद करते रहते हैं, लेकिन ये जो समर्थ मंत्र है फरिश्ता सुदेवता ये सारे दिन में स्मृति में रखना है। फरिश्ता अर्थात सदा वरदान देता है, लेता नहीं किसी से। तो तुमको लेवता नहीं बनना है, तुम देवता देने वाले हो। लेवता दो चीजें लेवता बनाती है, कौन सी, ये होना चाहिए या ये मिलना चाहिए, और भी कई सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये दो बातों में कोई छोड़ देना है। चाहिए चाहिए कचोरा दादी जान की ये बड़े दादी का क्लास है मेरे ना, प्रकाश मेरे दादी जी का क्लास है। तो वो नहीं बनना है, तो ये दो बातें छोड़ देनी है। तो हम देवता स्वरूप में रहे, फरिश्ता स्वरूप में रहे, देते रहे सबको, जैसे बाप दादा विधाता और बरदाता है ऐसे अब निरंतर उस समृति में रहे। और अभी फिर बाबा उसके बाद बहुत काल की बात कर रहे हैं कि बहुत काल का समय समाप्त हो रहा है, पुरुषार्थ का जो थोड़ा समय रह गया ये शुरू हो रहा है। तो ये जो 50 वर्ष बीत गए वो 50 वर्ष एक तरफ है और ये एक वर्ष एक तरफ है। इस एक वर्ष में हमको पुरुषार्थ और परिवर्तन करने का जो गोल्डन चांस मिला है इसको हमको किसी भी सूरत पर गंवाना नहीं है, इसका हमको पूरा पूरा फायदा ले जाना। 20 नाकड़ों का जोर लगाएंगे बड़े प्यार से पुरुषार्थ करके। तो बाबा कहते हैं कर्मों का खाता भी, फिर नहीं तो क्या होगा, बहुत काल के जो संस्कार है वो धर्मराजपुर के खाते में जमा हो गए। अभी कर्मों के हिसाब को जानो, समय के हिसाब को जानो, उस समय के हिसाब में नहीं जाओ कि 99 में होगा, 15 साल में होगा, 2000 में होगा, उसमें को छोड़ दो। विनाश काल को अंत काल का कहा जाएगा, उसमें जमा नहीं होगा। नहीं तो वो कई बच्चे सोते अंत में देख लेंगे हो जाएगा एक सेकंड में, नहीं बाबा कहते 2000 का हिसाब नहीं रखो, उसमें सुखो अभी मैं तब समझो समय का। नहीं तो फिर बाबा ने एक बात और की ब्राह्मणों के बारे में कि अभी भी बहुत व्यर्थ और अयथार्थ है, तो अभी भी इसको समाप्त कर दो। तो हमको दिल से रियलाइज करके ये भी समाप्त कर देना है, व्यर्थ और अयथार्थ इससे मुक्त हो जाना अभी। तो बाबा का वरदान होगा, इसमें बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, एक्स्ट्रा लिफ्ट है। फिर बाबा के समय का लाभ लो, स्मृति स्वरूप बनो, पॉइंट स्वरूप बनो, नष्ट मोह बनो, कौन कौन से मोह है वो सारे उसमें है। फिर बाबा दादियों से मिलेंगे, स्वर का गेट कौन खोलेगा, घर का गेट खोलेंगे, सिर्फ वाले से मिलेंगे। तो वो सारी बातें मुरली हैं। तो सारे दिन में हम या बीच बीच में मुरली को बार बार देखें, उसको अंदर ही अंदर चिंतन करें, सुने सुनाए एक दो को आपस में जिसको रुचि हो चीज की, वातावरण को हम शक्तिशाली बनाए, अनेक आत्मों को इमर्ज करके उनको सुख शांति की महसूसता करें जो बाबा ने मुरली में जिक्र किया। तो जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति अगर हम सचेत रहते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार हम चलते रहते हैं, तो वो खुशी स्वतः रहेगी।
मतलब
हाँ लास्ट अध्याय, और लास्ट अध्याय कब 86 में चालू हो चुका हुआ।
तो उसने बाबा ने देखो अभी चल रही मतलब आज के हिसाब से,
आज के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल
मुरली 18वां अध्याय मतलब टोटल खत्म,
टोटल खत्म।
गीता का लास्ट
चैप्टर, गीता का लास्ट चैप्टर नष्ट मोह स्मृति लब्धा, बताया ना कि स्मृति और विस्मृति स्केल को छोड़ दो, निरंतर स्मृति स्वरूप बनो। तो हमको निरंतर अपनी संपूर्ण अवस्था में स्थित रहना, कहने का तात्पर्य। तो बाबा ने ऐसे बच्चों को याद प्यार भी दिया, कौन से बच्चों को, जो सदा समर्थ बच्चे हैं, जो सदा निश्चय बुद्धि हैं, निश्चिंत हैं, ऐसे बच्चों को याद प्यार है। और कौन कौन से याद प्यार, परिश्रा सुदेवता स्थिति में रहने वाले, विदाता प्रदाता स्थिति में रहने वाले, जो हमेशा संपूर्णता की स्टेज पर रहते हैं, जिनका संपूर्णता आह्वान कर रही है विजय माला लेकर, ऐसे बच्चों को, और पुरुषार्थ और प्रलब्ध के इस गोल्डन चांस को पूरा सदुपयोग करने वाले बच्चों को, और नष्ट मोह समर्थि स्वरूप निरंतर इस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, मेहनत से मुक्त रहने वाले बच्चों को, एक्स्ट्रा मदद अनुभव करने वाले बच्चों को, युद्ध के संस्कारों को खत्म करने वाले बच्चों को, ब्रह्मा के राज को जानने वाले बच्चों को, सदा हाँ एक बन वन वाली बात थी कि हर बात में नंबर 1 में आने वाले बच्चों को, चाहे वो प्रकृति सतो प्रधान है, राज्य में नंबर वन है, संबत वन वन है, ब्रह्मा भाव के साथ में वन में आना है, ऐसे नंबर वन बच्चों को, गोल्डन जुबली वाले बच्चों को, सिल्वर जुबली वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।